काळवर्ती वचन नमो लोय श्रुति काळवर्ती शोषण ओंकार बिंदु संयुक्त उद्यम ध्यान कामदम ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम मंगलम कुंकुंदारी उजयंदर मुस्तु मंगल सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारण जैनम जय शासन नम समय साराय स्वानुभूति अचकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर મારો શું શાશ્વત એક દર્શન જ્ઞાન લક્ષણ જીવ છે બાકી બધા સંયોગ લક્ષણ ભાવ નથી ભાઈ છે હું એક શુદ્ધ સદાર વિજ્ઞાન દર્શનમય કરે કે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી જે જાણતો અરહંત ને ગુણદ્રવ્ય ને પર્યાય પડે તે જીવ જાણે આત્મને તશુભોગ પામેલ એક નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી એક નાયક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ કથા એને જે જ્ઞાત છે તો તે જ છે જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદક જાણે જ કરવું દઈ ની જરા બંધ તે ઓમ શ્રી નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય નમઃ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનું જે ભરત ક્ષેત્રમાં આગમન થયું તે ખરેખર આપણા સૌના ખૂબ જ મહા ભાગ્યનો ઉદય છે કારણ કે પૂજ્ય ગુરુદેવજી શ્રી જેવા પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી કા મહાવિનય ક્ષેત્ર સે ભરત ક્ષેત્ર મેં આના વો હમ સબ ભવી જીવો કા મહાભાગ્ય હૈ ક્યોંકિ એસે પુરુષ જો યહાં આતે હૈ ભરત ક્ષેત્ર મેં તો વો દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ કા દાન દેને કે લિયે આતે હૈ ઓર દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ ક્યા હૈ ત્રિકાલી ધ્રુવ પરમાત્મા ક્યા હૈ વો ત્રિકાલી ધ્રુવ સ્વભાવ કેસા હૈ ઓર વો અનુભવ મેં કેસે આયે ઉસકી દ્રષ્ટિ કેસે હો જાય ઓર ભવી જીવ કી અનુભૂતિ સે મોક્ષ માર્ગ કા પ્રયાણ હો કે મુક્તિ કેસે હો એસા માર્ગ દિખાને કે લિયે હી એસે પુરુષ કા યહાં જન્મ હોતા હૈ કોઈ ભી જ્ઞાની કા જન્મ યહાં હોય તો વો મુખ્યતયા દ્રષ્ટિ કા વિષય દિખાને કે લિયે હી જ્ઞાની કા જન્મ હોતા હૈ દ્રષ્ટિ કા વિષય જો પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી દ્વારા પ્રતિપાદિત કિયા ગયા હૈ વો ઇતના મહિમાવંત હૈ ઇતના અપૂર્વ હૈ કે અગર વો દ્રષ્ટિ કા વિષય કેસે ખ્યાલ મેં આયે વો કેસા હૈ એસા જીવો કો વિકલ્પાત્મક દશા મેં ભી અગર પતા ચલ જાય તો ઉસકા ઉપયોગ ઓર ઉસકી દ્રષ્ટિ વહાં વિકલ્પ અવસ્થા મેં ભી કામ કરને કે લિયે તત્પર હો જાય એસા યે પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી કા આહવાન હૈ કે સભી જીવ ભગવાન હૈ સભી જીવ પરિપૂર્ણ હૈ સભી જીવ શાશ્વત હૈ ઉસમે કોઈ અપૂર્ણતા નહીં હૈ ઉસમે કોઈ અજ્ઞાન નહીં હૈ ઉસમે કોઈ રાગ દ્વેષ રૂપી પરિણામ નહીં હૈ એસા સર્વ જીવ સિદ્ધ સમાન હૈ કિસી કો સિદ્ધ બનના નહીં હૈ વો સ્વયં સિદ્ધ સમાન ભગવાન આત્મા હૈ એસા પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી કા મહામહિમાવંત ઉપદેશ હૈ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી ને યહાં ભરત ક્ષેત્ર મેં આકે 45-45 વર્ષો તક એસી સિંહ ગર્જના કી કે તું ભગવાન હૈ તું સ્વયં ભગવાન હૈ તું પરિપૂર્ણ હૈ તું અકર્તા સ્વભાવી હૈ તું શાશ્વત ત્રિકાલી દ્રવ્ય હૈ તેરે મેં કમી સચમુચ મેં કુછ હૈ નહીં बस ऐसा तेरे को विश्वास करना है, इतना ही तेरा कर्तव्य है कि तेरा आत्मा जैसा है, तेरा त्रिकाली द्रव्य जैसा है, ऐसा तू विश्वास कर ले, ऐसी तेरी श्रद्धा बना ले, ऐसा विकल्पात्मक परिणमन में भी उसका ही विचार किया कर, तो तू स्वयं भगवान है तो भगवान हो ही जाएगा। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री का 45 वर्ष तक उपदेश आया है। और ये जो 175 जो विषय माने की जो गाथाएं 47 शक्ति 47 नहीं लिंग्रहण के बोल, अव्यक्त के बोल और श्रीमद राजचंद्र जी के स्वद्रव्य परद्रव्य के बोल, वो सब जो विषय पूज्य गुरुदेव श्री के रोज सवेरे के जो चिंतन के विषय थे, उसी में मुख्यपणे पूज्य गुरुदेव का घूटन तो दृष्टि का विषय का ही चलता रहता था, आदर तो उसको इसका ही चलता रहता था, और जानने में सब आता था मगर जानने की सदाए पूज्य गुरुदेव श्री को गौणता रहती थी। जानने का विषय नहीं होता है ऐसा नहीं है, मगर प्रयोजनभूत जो विषय है, जो दृष्टि का विषय है, जो प्रमाण का विषय में से दृष्टि का विषय जो निकालना होता है, वो मूल पूज्य गुरुदेव श्री का उपदेश है। और वही जो उपदेश है उसका ही 45 साल तक पूज्य गुरुदेव श्री ने जय घोष करके घोषणा की है कि तू परिपूर्ण स्वभावी भगवान आत्मा है, बस उतना ही विचार तू कर, तू परमात्मा है ऐसा ही निर्णय कर, तू परिपूर्ण भगवान है वही तेरा ज्ञान में तू अंदर में वही झांका कर, दृष्टि में उसको ही द्रव्य को ही दृष्टि में ले, और कुछ परिणाम जो होता है, जो परिणाम होने योग्य है वो तो होता ही रहता है, वो तो क्रमबद्ध होता रहता है, उसको ना तो कोई फिरा सकता है, ना तो कोई आगे ला सकता है, ना तो उसके ऊपर कोई विश्वास कर सकता है। एक विश्वास लायक चीज है तो परिपूर्ण परमात्मा है, त्रिकाली ध्रुव है, बस उसी का ही पूज्य गुरुदेव श्री ने मुख्यतया उपदेश दिया है। जानने की बात आती है वो पूज्य गुरुदेव श्री करते जाते हैं, मगर गौणपणे करते हैं। मुख्यत्वे उसका उपदेश की शैली में सिद्धांत बोध की सी गर्जना और परिपूर्णता की ही मूल मुख्यतया बात आती रहती है। ऐसा जो ये विषय है 11 से 16वीं गाथा, मेरे को रजनी भाई ने बोला है कि 11 से 16वीं गाथा लेनी है, तो 11वीं गाथा जो है वो 11वीं गाथा तो पूज्य गुरुदेव श्री को तो बहुत प्रिय थी। वैसे तो सभी गाथाएं पूज्य गुरुदेव श्री को तो प्रिय ही थी, और सभी ज्ञानियों को सभी गाथाएं प्रिय होती है। कोई गाथाएं आदर करने के लिए प्रयोजन वाली होती है, और कोई गाथाएं निषेध करने के लिए भी प्रयोजन वाली होती है। आचार्य भगवान की कोई भी गाथा होती है वो प्रयोजन भूत ही होती है, वही गाथा आचार्य भगवान लिखते हैं। उसमें जो 11वीं गाथा है वो 11वीं गाथा भी पूज्य गुरुदेव श्री को अपना स्वसंवेदन में निमित हुई थी ऐसा कहा जाता है। तो 11वीं गाथा तो बहुत अद्भुत है, जैन दर्शन का प्राण है। 11वीं गाथा में तो सगड़ाए व्यवहार को अभूतार्थ किया गया है। वो गाथा पूज्य गुरुदेव श्री को जो अति प्रिय थी वो गाथा अपन पहले बोल के उसका विस्तार चालू करेंगे। व्यवहार नया अभूतार्थ दर्शित सूत नया भूता भूतार्थने आश्रित जीव सुरति निशय होय। उसका गाथार्थ है व्यवहार नहीं अभूतार्थ है और शुद्ध नहीं भूतार्थ है, ऐसा ऋषिश्वरों ने दर्शाया है, जो जीव भूतार्थ का आश्रय करते हैं वही जीव निश्चय से सम्यक दृष्टि है। अभी यहाँ पे चर्चा व्यवहार नहीं अभूतार्थ है और शुद्ध नहीं भूतार्थ है, दो ही बात एक गाथा में आई है कि व्यवहार नहीं के भी बहुत अर्थ होते हैं। त्रिकाली द्रव्य से देखते हैं तो पूरे पूरी पर्याय है, उसको व्यवहार बोला जाता है। उसमें पर्याय में मोह राग द्वेष अज्ञान की पर्याय हो कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की पर्याय हो, केवल ज्ञान की पर्याय हो या तो सिद्ध की पर्याय हो, कोई भी पर्याय को त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा से अगर त्रिकाली द्रव्य को निश्चय कहे तो पर्याय मात्र को व्यवहार कहा जाता है। अभी दूसरा अर्थ, केवल ज्ञान की पर्याय को निश्चय कहे तो भावश्रुत ज्ञान की पर्याय को व्यवहार कहा जाता है। भावश्रुत ज्ञान की पर्याय को निश्चय कहे तो विकल्पात्मक जो भी मतिश्रुत की पर्याय है उसको व्यवहार कहा जाता है। इस तरीके से व्यवहार का अर्थ होता है, माने कि कौन सी जगह से कौन सी बात बोली जाती है उसके ऊपर निश्चय और व्यवहार का आधार रहता है। मगर यहाँ पे जो बात है वो यहाँ पे जो बात आई है ग्यारहवीं गाथा का संदर्भ में जो बात चलती है उसमें ग्यारहवीं गाथा में ये जो गाथार्थ है उसमें शुद्ध नहीं त्रिकाली द्रव्य को कहा है। त्रिकाली द्रव्य ही शुद्ध नहीं है और पर्याय मात्र व्यवहार है, माने कि कोई भी पर्याय में रागादि भाव वर्तता हो कि पर्याय में वितरागता वर्तती हो, कोई भी पर्याय को व्यवहार कहा जाता है। त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा से कोई भी पर्याय का नाम व्यवहार है, ऐसा यहाँ सुदनई त्रिकाली द्रव्य को बोला गया है, ऐसा इसमें गाथा में से निकलता है। पूज्य गुरुदेव श्री ने भी यही इसमें से स्पष्टीकरण किया है। अभी व्यवहार नहीं किया है कि व्यवहार नहीं का इसमें निषेध किया है, तो व्यवहार नहीं के इसमें चार प्रकार है, यानी कि व्यवहार नहीं है वो व्यवहार नहीं, दो प्रकार के असद्भुत व्यवहार होते हैं, दो प्रकार के सद्भुत व्यवहार होते हैं। अभी अपन आत्मा की चर्चा करें तो आत्मा में प्रमाण से देखें तो एक तो ज्ञायक भाव है, एक उसका ज्ञान का उपयोग है और एक रागादि परिणाम है, ये ट्रायंगल है, ये तीनों में छुपायेली आत्म ज्योति है, उसमें से आत्मा को अपने को खोजना है। उसके बाहर तो कहीं आत्मा है ही नहीं, पर में तो आत्मा है ही नहीं, पर को छोड़ के प्रमाण का विषय जो है द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु उसी में आत्मा छिपा हुआ है, उसमें से अपने को आत्मा को ढूंढना है। अभी एक तो ज्ञायक भाव है, वो जीव तत्व है, उसका प्रगट ज्ञान का अंश है, उसको उपयोग बोला जाता है, और एक औदयिक भाव रागादि परिणाम उत्पाद वाला भी चारित्र की विपरीत दशा को रागादि भाव भी बोला जाता है। ऐसा नायक भाव त्रिकाली द्रव्य ज्ञान का उपयोग माने ज्ञान का प्रकट अंश और रागादि परिणाम औदयिक भाव, ये तीनों एक साथ में रहते हैं। ध्रुव है, नायक भाव है, वो कुटस्थ है, अपरिणामी तत्व है, शाश्वत तत्व है, अभेद तत्व है, उपाधि भूत वस्तु है, अहम करने लायक पदार्थ है, वो ही मैं हूँ सचमुच में, और उसके बाहर जो भी ज्ञान का अंश है रागादि पर्याय है वो सचमुच में मैं नहीं हूँ, वो नायक भाव है, वो दृष्टि का विषय है, वो और दृष्टि है वो पर्याय है, ज्ञान का उपयोग है वो भी पर्याय है, रागादि भाव है वो भी एक समय की बहिर्गतसी पर्याय में प्रत्येक समय में चलते रहते हैं। उसमें ये व्यवहार नहीं, सगड़ाय अभूतार्थ यहाँ पे बोला गया है, उसका अर्थ क्या है? तो व्यवहार नहीं का चार विभाग इसमें बताया गया है। अध्यात्म में व्यवहार नहीं के चार पहलू होते हैं। अभी उसमें दो असद्भुत व्यवहार के हैं, दो सद्भुत व्यवहार के हैं। वो असद्भुत व्यवहार और सद्भुत व्यवहार वो दोनों से पार्ग नायक तत्व है, वो दोनों से रहित नायक तत्व है। वो नायक तत्व मैं हूँ और ये जो ज्ञान अंश है और राग अंश है उसमें सद्भुत और असद्भुत व्यवहार लागू पड़ते हैं। अभी उसमें असद्भुत व्यवहार के दो भेद है, सद्भुत व्यवहार के दो भेद है। जो प्रत्येक समय की बहिर्लक्षी एक समय की पर्याय में रागादि भाव औदयिक भाव चलते रहते हैं, प्रत्येक जीव की अभी अज्ञान दशा की पर्याय में रागादि भाव चलते रहते हैं, उसके राग के दो प्रकार है। एक तो राग ख्याल पे आता है जीव को, माने कि क्या आपकी रागादि परिणाम चलते हैं, वो जीव को ज्ञान में पकड़ में आता है, ज्ञान के अंश में पता चलता है कि मेरी एक समय की परलक्षी बहिर्लक्षी पर्याय में रागादि भाव अभी वर्त रहा है, अभी मेरे परिणाम में वितरागता नहीं है, राग का परिणमन चालू है, ऐसा उसको ज्ञान में पता चलता है। तो वो जो रागादि परिणाम का पता चला उसको असद्भूत उपचार व्यवहार बोला जाता है। ये असद्भुत व्यवहार के दो भेद हैं, वो दोनों भेद राग के हैं। सद्भुत व्यवहार के दो भेद हैं, वो दोनों भेद ज्ञान के हैं। असद्भुत व्यवहार के दो भेद में से पहला भेद है वो राग जो परिणाम चलता है वो उसको ज्ञान में ख्याल में आता है, तो उस राग को असद्भुत जो आत्मा में नहीं है इसलिए असद्भुत व्यवहार माने कि भेद रूप है, और उपचार उसको बोला जाता है कि वो उसको ख्याल में आ जाता है इसलिए उसको उपचार बोला जाता है। इस अपेक्षा से असद्भुत उपचरित व्यवहार वो उसको राग ख्याल में आता है उसको असद्भुत उपचरित व्यवहार बोला जाता है। ये असद्भुत का पहला भेद है। अभी उसी समय में वही समय में वहां पे ही जो राग है सही मगर उसको दिखता नहीं है, उसके ख्याल में नहीं आता है, राग है मगर जो ख्याल में नहीं आवे वो राग को असद्भुत अनुपचरित व्यवहार बोला जाता है। राग तो है, दशा में राग चल रहा है मगर वो राग उसकी पकड़ में नहीं आता है, उसकी ख्याल में नहीं आता है, उसको असद्भुत अनुपचरित राग बोला जाता है। अभी ये अपनी व्यवहार की चर्चा चल रही है, वो व्यवहार आत्मा में त्रिकाली नायक भाव में है नहीं, त्रिकाली नायक भाव से वो बाहर है, उसकी चर्चा चल रही है। उसके दो भेद है असद्भुत और सद्भुत, असद्भुत के दो भेद और सद्भुत के भी दो भेद। असद्भुत के दो भेद राग के होते हैं और सद्भुत के दो भेद ज्ञान के होते हैं। अभी असद्भुत के दो भेद में एक तो राग है, वो दिखने में आता है, पकड़ में आता है, ख्याल में आता है, वो राग को असद्भुत उपचरित व्यवहार बोला जाता है। और दूसरा जो भेद है असद्भुत का वो ख्याल में नहीं आता है उसको असद्भुत अनुपचरित व्यवहार बोला जाता है। जहां तक यथाख्या चारित्र प्रगट जीव को नहीं होता है तब तक उसकी परिणमन दशा में राग रहता ही है, चाहे तो राग पकड़ में आवे तो भी रहता है राग, और चाहे राग पकड़ में नहीं आवे तो भी राग उसको चालू ही है। ऐसा असद्भूत व्यवहार का अर्थ पहले में पहला है। अभी उसके बाद में सद्भूत व्यवहार, सद्भूत व्यवहार जो है वो ज्ञान को सद्भूत व्यवहार बोला जाता है। ज्ञान में जो राग ख्याल में आता है और नहीं ख्याल में आता है ज्ञान में राग, उसको असद्भूत बोला जाता है। और वो असद्भूत व्यवहार जो ज्ञान में ख्याल में आता है, वो ज्ञान का जो अंश है, वो ज्ञायक का अंश होने से, वो भेद होने से व्यवहार है, ज्ञायक का अंश होने से सद्भूत है। और वो ज्ञान उसके ख्याल में आता है मगर वो राग को जानता है, इसलिए उसको उपचार बोला जाता है। और वो ज्ञान को राग को जानता है इसकी अपेक्षा से वो ज्ञान का नाम सद्भूत व्यवहार उपचार, ऐसा उस ज्ञान का अंश को कहा जाता है। सद्भूत माने की वो ज्ञायक का अंश है, व्यवहार माने की वो भेद है, और उपचार माने की वो ज्ञान राग को जानता है या तो राग उसका ज्ञान में जानने में आ जाता है, उसको सद्भूत उपचार व्यवहार कहा जाता है। और बाद में चौथा भेद है वो भी सद्भूत अनुपचरित व्यवहार, वो भी ज्ञान का भेद है। ज्ञान वो ही आत्मा, ज्ञान सो आत्मा, वो सद्भूत अनुपचरित व्यवहार उसको बोला जाता है। तो वो जो ज्ञान जो आत्मा, ज्ञान से आत्मा, ज्ञान वो ही आत्मा, ऐसा आत्मा में कोई भेद नहीं है, मगर ऐसा भेद ज्ञान से आत्मा, ज्ञान वो ही आत्मा, ऐसा ज्ञायक में ज्ञान का भेद करके ज्ञायक को समझना, ऐसा ज्ञान का भेद को सद्भूत अनुपचरित व्यवहार कहा जाता है। ये चारों प्रकार के व्यवहार छठी गाथा जो है, छठवीं गाथा अप्रमत प्रमत दशा वाली, कि अप्रमत प्रमत दशा ज्ञायक भाव में नहीं है, उसमें ये दो असद्भूत के और एक सद्भूत उपचार का व्यवहार उसमें से निकलता है। और सातवीं गाथा में गुण भेद की जो बात आई है, उसमें से ये चौथा प्रकार वाला ज्ञान वो ही आत्मा, वो अंश का व्यवहार, वो चौथा प्रकार वो सातवीं गाथा में से निकला है। तो ये परिपाटी जो पहली गाथा से चल 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 के दसवीं गाथा में आई, कि श्रुत केवड़ी किसको कहते हैं, कि जो ज्ञान में आत्मा को जाने वो निश्चय श्रुत केवड़ी, और वो निश्चय श्रुत केवड़ी जो ज्ञान में आत्मा को जाना, वही ज्ञान को ज्ञान जाने, उसको व्यवहार श्रुत केवड़ी कहा जाता है। ऐसी परंपरा आते 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 यहाँ ग्यारहवीं गाथा में सभी प्रकार के व्यवहार को अभूतार्थ असत्यार्थ को कहा गया है, क्योंकि वो अभूत अर्थ को प्रकट करता है, वो भूतार्थ को प्रकट नहीं करता है। जो भूतार्थ भाव, ज्ञायक भाव, त्रिकाली भाव, स्वयं स्वभाव, शाश्वत भाव, एक रूप भाव, नित्य भाव, शाश्वत अभेद, एकाकार परमात्मा, ज्ञायक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, उसको जो प्रकट करे उसको ही शुद्ध नहीं बोला जाता है। और ये जो भी नहीं दर्शाई है वो कोई भी नहीं अपने ज्ञायक भाव को प्रदर्शित नहीं करती है, इसलिए ये चारों प्रकार की भेद रूप नहीं को अभूतार्थ और असत्यार्थ कही गई है। ये यहाँ पे जो गाथार्थ में शुद्ध नहीं कहा है वो त्रिकाली द्रव्य है, और जो व्यवहार बोला गया है वो चारों प्रकार का व्यवहार को अभूत और असत्यार्थ अर्थ को प्रकट करने वाली नहीं बताई गई है। नहीं है वो, नहीं है वो कभी त्रिकाली द्रव्य को ये व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं प्रकट नहीं कर सकती। परम शुद्ध निश्चय नहीं का, शुद्ध नहीं का जो विषय है वो त्रिकाली द्रव्य है,
माने कि ये जो नहीं बताई गई है वो व्यवहार नहीं, सगरी व्यवहार नहीं, वो अभूतार्थ होने से उसका यहाँ निषेध किया गया है। और शुद्ध नहीं, एक ही भूतार्थ है, एक ही सत्यार्थ है, माने कि त्रिकाली द्रव्य ही सत्यार्थ है, त्रिकाली द्रव्य ही भूतार्थ है, और त्रिकाली द्रव्य एक है, इसलिए उसको बताने वाली नहीं भी एक है। नियम सार का एकत्रवा कलश है, वो एकत्रवा कलश में आचार्य भगवान ने कहा है कि हम किस नहीं से देखे कि ये सम्यक दृष्टि है कि ये मिथ्या दृष्टि है, ऐसी हमारे पास कोई नई ही नहीं है। हमारे पास तो ऐसी ही एक नई है कि जो हमारे त्रिकाली स्वभाव को ही देख सके, कोई एक नहीं है जो हमारे त्रिकाली स्वभाव को देख सके। इसलिए त्रिकाली नायक भाव एक है तो नई एक ही होती है। पंचाध्यायकर्ता ने भी कहा है कि एक ही नहीं है, कि जो नहीं अपने आत्मा को बताए, वो जो आत्मा को बताए उसको हम नहीं बोलते हैं। शुद्ध नहीं से आत्मा दिखने में नहीं आता है, जिसमें आत्मा दिखने में आवे उसका नाम शुद्ध नहीं है। माने कि कोई भी जगह पे त्रिकाली द्रव्य की मुख्यता सर्वस्वता नहीं छूटना, उसको ही सचमुच में नहीं कही जाती है। उसके अलावा त्रिकाली द्रव्य को जो नहीं बताती है उसको सचमुच में नहीं ही नहीं कही जाती है। जो त्रिकाली द्रव्य एक है तो वो एक को बतावे उसका नाम ही यहाँ नहीं कही गई है। बाद में 47 नई का प्रकरण है, वैसे तो एक ज्ञान में अनंत नहीं है, ये वो विषय अलग है, मगर यहाँ दृष्टि के विषय की चर्चा है। त्रिकाली द्रव्य को बताना है, ध्रुव स्वभाव को बताना है, एक रूप भाव को बताना है, तो एक रूप भाव, त्रिकाली भाव, शाश्वत भाव, उसको उसके जैसी ही परिणमन वाला उसको बता सकता है। उसके लिए यहाँ व्यवहार नहीं को अभूतार्थ कह के शुद्ध नहीं को भूतार्थ कहा गया है। ऐसे चार प्रकार वाली नहीं, वो आत्मा में नहीं है, त्रिकाली द्रव्य में नहीं है, त्रिकाली द्रव्य है वो ध्रुव है, और ये जो परिणमन है वो उत्पाद वाला है, उत्पाद है वो संयोग है, द्रव्य है वो स्वभाव है, स्वभाव में संयोग की अनादि अनंत नास्ति है। कोई समय ऐसा नहीं होता है कि त्रिकाली द्रव्य जो स्वभाव है, ध्रुव भाव है, उसमें कोई अंदर में उत्पाद हो, अंदर में कोई व्यय रूप भाव हो, ऐसा त्रिकाली द्रव्य है ही नहीं। जिसकी दृष्टि करना है, जिसकी दृष्टि होती है, तो दृष्टि तो स्वयं उत्पाद है, ज्ञान का अंश तो स्वयं उत्पाद है, तो उत्पाद किसे बोला जाता है? व्यक्त को बोला जाता है। और ध्रुव किसे बोला जाता है? अव्यक्त को बोला जाता है। तो उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत जो है उसमें वो प्रमाण का विषय है, वो प्रमाण का विषय में से शुद्ध नहीं का विषय जो निकालता है वो जीन वचन में कुशल है। माने कि गुरुदेव का उपदेश 45 साल तक यही चल रहा है कि जो भी विषय आए, कोई भी विषय चले, माने कि प्रवचन सार का विषय चले, त्रिकाली द्रव्य शुद्ध नहीं का विषय चले, समय सार का विषय चले, नियम सार का विषय चले, मगर उसी में से पहले में पहले अपने स्वभाव को खोज लेना, अपना स्वभाव जो शाश्वत है उसको निकालना, दूसरी सब दृष्टि छोड़ते जाना। गुरुदेव भी क्या करते हैं कि दृष्टि का विषय बताते जाते हैं, पर्याय का ज्ञान कराते जाते हैं, और आदरभूत विषय को दृष्टि में लेने का उपदेश दिया करते हैं कि जो भाई भगवान आत्मा तेरा यहीं पे है, जहाँ तेरा प्रकट ज्ञान का अंश उपयोग रूप है वहीं तेरा अंशी छुपा हुआ है, वो अंश में ही तेरा अंशी विद्यमान है, वो अंश को पकड़ के तू अंशी में चला जा, वो अंश तो प्रकट है सबके पास, ज्ञान का अंश तो प्रत्येक जीव के पास जानना 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 वो अंश तो प्रत्येक समय में प्रत्येक जीव को चलता है, और वो अंश में तो उसका अंश अंशी में से आता होने से उसका अंशी तो उसमें प्रकट विद्यमान है ही, उसको ढूंढना नहीं है, वो उसमें है ही विद्यमान, अंश में अंशी है ही। तो अंश को तू पकड़ ले तो वो अंश में तो अंशी ही दिखेगा तुझे। तो वो ज्ञान तो प्रत्येक समय में प्रत्येक जीव के पास प्रकट है, और वो ज्ञान का कार्य यही है कि उसमें अंशी को देखना। वो ज्ञान का अंश का प्रयोजन इतना ही है कि उसमें अंशी को देखना। शुद्ध नहीं का प्रयोजन इतना ही है कि उसमें शुद्ध स्वभाव को देखना, उसके अलावा उसका कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा यहाँ शुद्ध नहीं त्रिकाली द्रव्य को कहके वो जो प्रकट होने वाला अंश है वो ऐसा जयघोष करेगा कि मैं त्रिकाली द्रव्य हूँ, मैं वर्तमान में शुद्ध हूँ, मैं वर्तमान में परिपूर्ण हूँ, उसको शुद्ध नहीं बोला जाता है। शुद्ध नहीं से शुद्ध आत्मा पकड़ में नहीं आता है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ उसका नाम शुद्ध नहीं है। ऐसा दृष्टि का दान पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक दिया है, और ये जो 11वीं गाथा है वो दृष्टि के विषय की गाथा है। उसमें यहाँ कदम कदम पे व्यवहार का निषेध करके निश्चय माने के भूतार्थ सत्य त्रिकाली द्रव्य स्वभाव को ही बताने का आशय आचार्य भगवान ने इसमें प्रकट किया है। जो मैं हूँ, मैं त्रिकाली द्रव्य हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अभेद हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, तो उसमें कोई भेद रूप वस्तु ही नहीं है। भेद रूप वस्तु अभेद में नहीं है, जहाँ भेद है वहाँ है, उसे भेद को भेद में रहने दो, मगर अभेद को देखने के टाइम में भेद को याद मत करो। गौण करके भी यहाँ कहा गया है तो गौण करके भी भेद को दृष्टि में नहीं रखना है। दृष्टि में तो अकेला त्रिकाली द्रव्य रखना है कि मैं शुद्ध स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, मैं त्रिकाली द्रव्य हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं शाश्वत हूँ। जैसे सोगानी जी ने जो द्रव्य दृष्टि प्रकाश में उसके जो बोल आए वो अपन जो पढ़े, अपन उसका स्वाध्याय करे, तो उसमें अपने को ये 6वीं गाथा, 7वीं गाथा, 11वीं गाथा, 14वीं गाथा, 15वीं गाथा, सभी द्रव्य दृष्टि वाली गाथा ही उसमें अपने को नजरअंदाज होती जाए। उसको पढ़ते 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 एक 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 गाथा का स्मरण होता जाए, और इस गाथा को पढ़ते पढ़ते ऐसा लगे कि सोगानी जी ने तो ये गाथाओं में से ही ध्रुव को निकाला है। माने कि प्रत्येक गाथा में ध्रुव छिपा हुआ है, कोई गाथा में ध्रुव नहीं है ऐसा नहीं है। पहली गाथा में देखो, दूसरी में देखो, 415 में कोई भी गाथा देखो, उसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने तो पुन पाप आश्रव बंध की गाथाओं में से भी शुद्धात्मा निकाला। सवर निद्रा और मोक्ष की गाथाओं में तो शुद्धात्मा है ही, मगर पुन पाप आश्रव बंध की गाथा है उसमें भी पूज्य गुरुदेव श्री ने तो पुन पाप का भाव में नहीं हूँ ऐसा त्रिकाली द्रव्य में हूँ, आश्रव रूप में नहीं हुआ हूँ कभी ऐसा मैं निराश्रवी परमात्मा हूँ, बद्ध रूप में कभी नहीं हुआ हूँ ऐसा मैं अबद्ध स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। ऐसी ही पूज्य गुरुदेव श्री की द्रव्य दृष्टि दिखाने वाली शैली अपने को मिली है। तो अपना सब मुमुक्षु जीवों का कर्तव्य है कि उसकी वाणी सुन के उसमें से अपना भगवान आत्मा को कैसे ढूंढना, ऐसी ही उसमें चिंतन भूमिका की जाए, ऐसी मनन भूमिका की जाए, ऐसा ही अपना प्रयोग चले कि जो जो गाथाएं पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से चले, उसका जो प्रवचन चले, उसमें से अपने स्वभाव की बात कहाँ आती है, अपना ध्रुव को कहाँ दिखाया है। दूसरा सब ज्ञान कराने के लिए चीजें आती रहती है, वो गुरुदेव की शैली है कि पर्याय का ज्ञान तो अवश्य कराते जाते हैं। पर्याय में राधा दीभाव बहिर्लक्ष में चलता है, राग द्वेष मोह का परिणाम अज्ञान रूप प्रत्येक समय की पर्याय में जब तक अज्ञान ही है तब चलता है। बाह्य में कर्म का उदय भी है, उसकी सन्मुख होते है उसको अपना मान के जो जीव चलता है तो उसको राग आदि भाव अज्ञात भाव अज्ञान भाव प्रत्येक समय में प्रकट होता है, ऐसा ज्ञान कराते जाते हैं और ऐसा ज्ञान करा के वो तरफ का लक्ष्य छुड़ा के त्रिकाली द्रव्य को बता के उसकी दृष्टि कैसे करना, उसका ज्ञान कैसे करना, उसमें कैसे रहना, उसमें कैसे लीनता करना, वही पूज्य गुरुदेव श्री का मुख्य उद्देश्य वही रहा है। ये ग्यारहवीं गाथा पूज्य गुरुदेव श्री को इतनी प्रिय थी कि इसमें जब भावार्थ चला तो वो भावार्थ उसने तीन बार भावार्थ लिया, फेर के तीन बार भावार्थ लिया, क्योंकि जीव को व्यवहार का पक्ष अनादि का चलता है। व्यवहार तो उसके पास है ही नहीं, व्यवहार तो निश्चय प्रकट हो उसको होता है, व्यवहार का पक्ष चलता है जीव को अनादि से। इसमें क्या है कि प्राणियों को वेद रूप व्यवहार का पक्ष अनादि से चलता रहता है और माहो माहे अंदरों अंदर उसकी ही चर्चा चलती रहती है। इतना तो व्यवहार होना चाहिए, इतना व्यवहार नहीं होता है तो दृष्टि कैसे होगी, इतना व्यवहार नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, ऐसे व्यवहार का पक्ष जीव अनादि का करता रहता है। पूज्य गुरुदेव श्री ने 18वीं बार के प्रवचन में, प्रवचन रत्नाकर 146वें पाने पे एक बात आई है बहुत मार्मिक। पूज्य गुरुदेव श्री ने ऐसा फरमान किया कि पर्याय तो है ना, पर्याय को जानना तो चाहिए ना, पर्याय को समझना तो चाहिए ना, ऐसे करते 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 जीव पर्याय की पुष्टि करके अज्ञान को दृढ़ करता है। पर्याय है तो सही ने, पर्याय को जानना तो चाहिए ने, पर्याय अवस्तु तो नहीं है ने, पर्याय को देखना तो चाहिए ने, उसका अवलोकन तो करना तो चाहिए ने। अरे भैया, जो गुरुदेव के पास जीव आया, गुरुदेव की जो देशना सुनता है, वो जीव को पर्याय का ज्ञान तो होता ही रहता है, वो कभी स्वच्छंदी नहीं होता है। जिसके ऊपर गुरु है, जिसके ऊपर गुरु की वाणी है, वो कभी स्वच्छंदी होता ही नहीं है। इसीलिए पर्याय को देखना बंद करके मैं त्रिकाली द्रव्य हूँ ऐसी द्रव्य दृष्टि करना, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री बार 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 बोलते रहते हैं। वो इशारा करते हैं कि ऐसा जीव मानता है पर्याय तो सही ने, पर्याय को जानना तो चाहिए ने, पर्याय को समझना तो पड़ेगा ने, पर्याय का अवलोकन तो करना पड़ेगा ने, ऐसा करके कर 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 करके पर्याय की पुष्टि करके पर्याय दृष्टि रह जाता है अनादि से। तो ऐसा भाव को छोड़ के द्रव्य दृष्टि का जो पूज्य गुरुदेव श्री ने दान दिया है, वो सुधने स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूं ऐसा ही उसको पहले में पहले आना चाहिए। पहले पर्याय को जानना, पर्याय को जानते रहना वो होता है विषय, जानने में आता भी है, मगर वो तो गुरुदेव का प्रताप से उसका स्पष्टीकरण तो बहुत आया है। तो अपन तो गुरुदेव की वाणी रोज गुरुदेव के शिष्य है वो सुनते ही रहते हैं, तो उसमें तो सब विषय आता है, मगर अपने को अपना प्रयोजनभूत विषय कैसे निकालना, कैसे उसमें से ढूंढना, कैसे उसकी दृष्टि कर लेना, कैसे द्रव्य को देखना, कैसे उसमें त्रिकाली द्रव्य प्रमाण का विषय में से निकाल लेना और अपनी प्रयोजन की सिद्धि अल्प समय में अल्प काल में कैसे हो जाए, वो प्रयोजन की सिद्धि के लिए ऐसी गाथा आचार्य भगवान लिखते हैं। एक तो जीव के पास टाइम बहुत कम, अब है गुरुदेव का 9-10 हजार प्रवचन तो उपलब्ध, उसमें से मूल उपदेश निकालने की प्रवृत्ति संक्षिप्त में अगर जीव को हो जाए तो द्रव्य और पर्याय दो वस्तु है, उसमें मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा अकर्तापना कहां है, मेरा ज्ञातापना कहां है, मेरा द्रव्य कहां छुपा हुआ है, ऐसा उसको देखना, उसी को तो पर्याय बोलते हैं। पर्याय मेरे में नहीं है उसी का नाम तो पर्याय की सिद्धि है। पर्याय में त्रिकाली स्वभाव में नहीं है, व्यवहार नहीं मेरे में नहीं है, उसी का नाम तो व्यवहार नहीं की सिद्धि है, उसी का नाम तो व्यवहार नहीं को स्थापित किया गया है। कौन बोलता है व्यवहार नहीं का निषेध करते हैं, कौन बोलता है कि व्यवहार नहीं को उड़ाते हैं? व्यवहार नहीं तो है मगर मेरे में नहीं है, जहां है वहां है, पर्याय पर्याय में है, पर्याय पर्याय में प्रवृत्तिशील है, पर्याय में पर्याय की क्रिया चलती है, मगर मैं तो निष्क्रिय परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो शाश्वत परमात्मा हूँ, मैं तो अखंड देव हूँ, मैं तो जागृत स्वभावी आत्मा हूँ। ऐसी द्रव्य दृष्टि बनाना माने कि इस इसीलिए पूज्य गुरुदेव श्री का जन्म हुआ है, इसीलिए पूज्य गुरुदेव श्री वर क्षेत्र में आए, इसीलिए पूज्य गुरुदेव श्री को सिमंदर भगवान ने वर क्षेत्र में भेजा है, नहीं तो पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ कैसे आते? क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री का जब यहाँ आना हुआ तभी तो यहाँ कैसी कैसा यहाँ का वातावरण था, भरत क्षेत्र का वातावरण कैसा था, आचार्य भगवान के शास्त्र थे मगर उसका उकेल करने वाला कोई नहीं था, माने कि टीका पड़ी थी। आचार्य अमृतचंद्र आचार्य ने 1000 वर्ष के बाद में कुंकुल आचार्य की टीका भी गाथाओं की बना ली थी मगर उसका विस्तार करने वाला कोई नहीं था। और आज की तारीख में भी इतना शास्त्र बाहर आ गए, इतनी वाणी बाहर आ गई, आचार्य भगवान के शास्त्र भी बहुत आ गए, मगर अगर आचार्य भगवान के शास्त्र के सामने अपने पास पूज्य गुरुदेव श्री की तीर्थंकर वत अगर देशना न होती तो ये शास्त्र में से ये भाव कौन निकाल सकता, ये कौन बोल सकता कि व्यवहार नहीं सगड़ा भूतार्थ है और शुद्ध नहीं एक ही भूतार्थ है? ये तो सब पूज्य गुरुदेव श्री की देन है, नहीं तो किसी को पता ही नहीं था कि व्यवहार क्या है, निश्चय क्या है, व्यवहार के भेद क्या है, सद्भुत व्यवहार क्या है, असद्भुत व्यवहार क्या है, अंश किसे बोलते हैं, अंशी किसे बोलते हैं, वो सब तो अपने को सिखाया है तो पूज्य गुरुदेव श्री ने। और बेल श्री तो बोला करते हैं, बेल श्री तो अपनी चर्चा में पहले उसकी शुरुआत ही ऐसे होती है कि पूज्य गुरुदेव श्री सब दे के गए है, पूज्य गुरुदेव श्री ने सब कहा है, हम तो उसने बोला है उसका संदेशा दे दिया। पूज्य गुरुदेव श्री सब कह के गए हैं, अपने को इसमें से आचार्य भगवान की गाथा में से अपना सयोपसम ज्ञान अंदर पूर्व के कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री ने जितना कहा है उतना अपनी समझ में आ जाए तो सम्यक दर्शन तो क्या केवल ज्ञान तब की बात पूज्य गुरुदेव श्री करके गए हैं, उसमें और किसी की जरूरत पड़े ऐसा सचमुच में नहीं है। पूरी बातें पूज्य गुरुदेव श्री 45 वर्ष में केवल ज्ञान तब की सिद्ध दशा तक की बात बता के गए हैं। कोई कोई ऐसा भी बात ध्यान पे आती है कि गुरुदेव ने तो सम्यक दर्शन की ही बात की है, सम्यक दर्शन के आगे की बात तो पूज्य गुरुदेव श्री ने नहीं कही है, वो तो अविरत सम्यक दृष्टि थे। तो केवल ज्ञान की बात अगर अपने को सुननी हो, यथा क्या चारित्र की अपने को बात सुननी हो तो अपने को तो कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा, नहीं तो अपने को वो परिणाम तो आ नहीं पाएंगे। अभी सम्यक दर्शन का तो जीव को पता नहीं है कैसे होवे, और जिसको सम्यक दर्शन होता है उसको तो चारित्र आने वाला ही है, उसको केवल ज्ञान आने वाला ही है। तो ये परम प्रतापी पुरुष, सी गर्जना वाला पुरुष, भगवान आत्मा को दिखाने वाला पुरुष, उसकी देशना में कोई कमी नहीं है, उसमें परिपूर्ण बात आ गई है। इसको एक बात को अवधारने से सम्यक दर्शन तो अल्प समय में प्रकट हो जाता है, अगर उसको पता चला कि सम्यक दर्शन की अनंत पर्याय जो प्रकट होने वाली है और केवल ज्ञान की अनंत पर्याय जो प्रकट होने वाली है भविष्य में, वो मेरे पारिणामिक भाव में शक्ति रूप तो वर्तमान में विद्यमान है, वर्तमान में पड़ी है, ऐसा मेरा पारिणामिक भाव है, ऐसा मेरा परम पारिणामिक भाव स्वभाव भावों में हूँ, ऐसा उसको पता चल जाए, वो अंदर देखे, वो अंदर जाके उसको देखने का प्रयास करे, तो उसको सब दिखता है। वो अभी बोल रहे थे ना, ये राकेश जी के प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद छोड़ दो, श्रुत ज्ञान तो भाव, श्रुत ज्ञान तो परोक्ष है, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, वो बात नहीं है। पारिणामिक भाव को जो देखता है उसको सब प्रत्यक्ष ही है, प्रत्यक्ष परोक्ष कुछ होता ही नहीं उसको, आत्मा दिखे उसको सब प्रत्यक्ष हो जाता है, उसको केवल ज्ञान भी दिख जाता है भाव श्रुत ज्ञान में, निर्विकल्प दशा में। भाव श्रुत ज्ञान की निर्विकल्प दशा की पर्याय में भी केवल ज्ञान का दर्शन हो सकता है, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री ने रात्रि चर्चा में भी बोला था और राजकोट में भी बोला है। इसीलिए कोई बात पूज्य गुरुदेव श्री अधूरी रख के नहीं गए हैं, पूरे पूरा विस्तार करके पूरा सम्यक दर्शन का और केवल ज्ञान का परिपूर्ण विषय बता के पूज्य गुरुदेव श्री गए, और अपने को तो उसको गुरुदेव की वाणी में जो उसका भाव आया है वो भाव को ग्रहण करके अपने भगवान आत्मा के ऊपर दृष्टि करना उतना ही अपना कर्तव्य है, उससे ज्यादा कुछ करना नहीं है, उतना ही कर्तव्य में सम्यक दर्शन दान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की प्रगटता हो सकती है। जितना संयोगसम जीव का है उतना विस्तार में जाए तो कोई उसमें हर्जा नहीं है, जा सकता है, मगर ज्यादा आकुलता होवे तो त्रिकाली द्रव्य की बात जो पूज्य गुरुदेव श्री ने कही है कि तू भगवान आत्मा है, तेरा प्रगट ज्ञान का अंश है, वो अंश में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको जानने में आ रहा है, आएगा ऐसा नहीं, आ रहा है, बस ऐसा भगवान आत्मा में हूँ, इतना ही तो कार्य है। राग तो चलता है पास में, जितना भेद है, जितना ज्ञायक और ज्ञान का भेद उसको दृष्टि में आता है उतना राग तो प्रकट होता ही रहने वाला है, और जितना ज्ञान और ज्ञायक का भेद निकल के अभेद पर दृष्टि जाती है तो वहाँ राग की जगह वितरागता प्रकट हो जाएगी, इतना ही कर्तव्य है। भेद की दृष्टि छोड़ना, अभेद की दृष्टि करना, ज्ञान का अंश में भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है ऐसा विचार कर 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 करके अपने ज्ञायक का अंदर दृष्टि में पुरुषार्थ बढ़ाना, अपना ज्ञायक का विकल्पात्मक सिद्धांत जो आया है उसको दृढ़ करना, वो ही आत्मार्थी का कर्तव्य है, दूसरा कुछ करना वो कर्तव्य है ही नहीं, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता है। पर्याय में कोई फेरफार कोई जीव कर सकता नहीं है, प्रत्येक समय की प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध सटकारक से क्रम नियमित चलती ही रहती है। जितनी पर्याय प्रकट होने वाली है वो सभी अंदर पारिणामिक भाव में गर्भित है, जितनी पर्याय प्रकट हो गई है वो सब व्यय होकर अंदर योग्यता रूप गर्भित पड़ी है, और वर्तमान पर्याय निर्णय करती है मैं भगवान आत्मा हूं, इतना ही उसका कर्तव्य है। भूत भविष्य की पर्याय की सोच नहीं करना, वर्तमान पर्याय में वर्तमान त्रिकाली द्रव्य में हूं उतना ही कर्तव्य है जीव का, बस उसी के ऊपर वही दृष्टिकोण से अकर्ता स्वभाव में हूँ, ज्ञायक भाव में हूँ, ज्ञाता स्वभाव में परमात्मा हूँ, उतना ही कर्तव्य जीव का है, उसी को ही देखना, उसी का विषय को पकड़ना। विषय तो ये ग्यारहवीं गाथा से सोलहवीं गाथा में सब आएगा, ग्यारहवीं गाथा में ज्ञानी होता है, बाद में बारहवीं गाथा में ज्ञानी की परिणमन की विकल्पात्मक दशा का वर्णन आता है कि व्यवहार नहीं, कोई कोई ने कोई वक्ते जाना हुआ प्रयोजनवान है, किसी किसी को किसी किसी वक्त में, यानी कि अज्ञानी को नहीं, केवली को नहीं, निर्विकल्प ज्ञानी ज्ञानी को नहीं, सविकल्प दशा में सविकल्प ज्ञानी को कोई कोई वक्ते कोई कोई को जाना हुआ प्रयोजनवान है। वो बारहवीं गाथा में भी ज्ञानी की विकल्पात्मक दशा का वर्णन आएगा, वो जानना उसका चलता रहता है, अभी दशा में क्या चल रहा है, कितना राग कम हुआ, कितनी वितरागता बढ़ी, वो सब ज्ञानी की ज्ञान पर्याय में प्रत्येक समय में उसका स्वपर प्रकाश स्वभाव होने से वो स्वभाव ही अंदर से प्रगट रूप ही स्वपर प्रकाश ऐसा होता है कि उसमें ऐसा ही जानना चलता है जैसा बाहर में राग है और जैसा अंदर में ज्ञायक भाव है। ऐसी ही स्वपर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय प्रत्येक समय में ज्ञानी को सम्यक रूप हो गया है, प्रकट होती रहती है, उसमें जानना चलता रहता है, उसको जानने जाना नहीं पड़ता है। वो ज्ञान में ज्ञान को भेद रूप जानता है तो सब ख्याल में आता है, और ज्ञान में ज्ञायक को अभेद रूप जानता है तो उसकी निर्विकल्प दशा चलती है, और वो विकल्पात्मक दशा ज्ञानी की आता है। उसके बाद में जो तेरहवीं गाथा है उसमें नव तत्व की चर्चा आने वाली है। वो नव तत्व में छुपाएगी आत्म ज्योति है, उसको उसमें से कैसे निकालना, वो प्रमाण का विषय में से सूत्री का विषय निकालने की गाथा है। उसमें पहली लाइन में आचार्य भगवान ने लिखा है कि जीवादि नव तत्व को भूतार्थ नहीं से जानने पे सम्यक दर्शन ही है। एक को जानने से तो सम्यक दर्शन होता है, ऐसा तो ग्यारहवीं गाथा में आया है कि भूतार्थ स्वभाव को जानने से सम्यक दर्शन होता है। अभी तो ये गाथा की साय भी सूखी नहीं है, और तेरहवीं गाथा में आचार्य भगवान आप ऐसे लिख देते हो कि भूतार्थ से नव तत्व को जानने से सम्यक दर्शन होता है। यहाँ तो सभी व्यवहार का निषेध करते हो और वहाँ नव तत्व को जानने से सम्यक दर्शन होता है ऐसा आप लिख देते हो। वो भी एक बहुत प्रयोजनभूत विषय है, वो भी तेरहवीं गाथा में आया है। उसके बाद में चौदहवीं गाथा में पांच बोल से अबध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष संयुक्त से भगवान आत्मा कैसा है वो दिखाया गया है कि अबध स्पष्ट आदि भावो सभी अभूतार्थ है, और अबध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष संयुक्त जो भगवान आत्मा है वो ही मैं हूँ। बद स्पष्ट आदि भाव तो ऊपर ऊपर तिरते रहते हैं, मेरे में है ही नहीं, ऐसा मैं अबध हूँ, ऐसा मैं अबध स्पष्ट हूँ, ऐसा मैं नियत हूँ, अविशेष हूँ, असंयुक्त हूँ। उसमें अबध स्पष्ट में बंध का निषेध, चार गति की परिणाम का निषेध, हानि वृद्धि का निषेध, वो सब करके गुण भेद का निषेध करके असंयुक्त राग का निषेध करके वो पांच बोल से भगवान आत्मा की सीधी चौदहवीं गाथा में की गई है। वो सम्यक दर्शन की गाथा है, और सम्यक दर्शन होता है उसको साथ में सम्यक ज्ञान होता ही है। उसकी पंद्रहवीं गाथा है कि जो भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव परमात्मा अभेद परमात्मा अखंड परमात्मा उसको जो देखता है वही ज्ञान को जिन शासन बोला जाता है जिन दर्शन बोला जाता है वो पंद्रहवीं गाथा है। उसमें पंद्रहवीं गाथा में ज्ञान की विधि बता के ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव और ज्ञानाकार सामान्य ज्ञान का आविर्भाव वो भेद ज्ञान की विधि बता के त्रिकाली द्रव्य को एक तरफ रख के ज्ञान में ही ज्ञान में तिरोभाव आविर्भूत बता के श्रद्धा का विषय को अखंड रख के ज्ञान में भेद ज्ञान करके सामान्य ज्ञान का आविर्भाव करके भेद ज्ञान करा के सम्यक ज्ञान की विधि बताई है। और सोलहवीं गाथा में दर्शन ज्ञान चारित्र वही आत्मा है, दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद वो अनात्मा है, दर्शन ज्ञान चारित्र को अभेद से देखो तो वही आत्मा है, ऐसा सोलहवीं गाथा का विषय है। ऐसे 11, 12, 13, 14, 15, 16 गाथा में ये सब गाथाएं जो है उसमें सब में त्रिकाली द्रव्य दिखाने की ही विधियां छुपी हुई है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं अनादि अनंत मेरा उपयोग में रहता हूँ, मेरा उपयोग से बाहर मेरा नायक भाव कहीं गया ही नहीं है, ऐसा मेरा शाश्वत स्वभाव मेरा ज्ञान अंश में वर्तमान में प्रकट रूप ही, उसको लाना नहीं है, उसको उपयोग को बाहर से हटाकर उपयोग को अंदर में लाना वो बात वो विषय अलग है। यहाँ तो ज्ञान का अंश में ज्ञायक भाव छिपा हुआ है, ज्ञान उपयोग में ज्ञायक भाव वर्त रहा है, ऐसा अंश में अंशी में हूँ ऐसा श्रद्धान ज्ञान प्रकट करना उसका नाम सम्यक दर्शन दान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। ऐसी विधियां ये 11 से 16 गाथा में परिपूर्ण रूप से भगवान आत्मा कैसा है ऐसा आचार्य भगवान ने घोषणा करके बताया है। उसका आगे विस्तार अपन एक एक बात करके जितना अपनी सयोपसम की योग्यता है ऐसा अपन कर सकेंगे ऐसा करेंगे। बाकी तो गुरुदेव ने जो विस्तार किया है ऐसा उसमें से तो समुद्र के बिंदु के समान भी अपन विस्तार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास तो ऐसा ज्ञान का समुद्र भरा हुआ है। ऐसा ज्ञान 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 अखंड 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 ज्ञान ऐसी उसकी परिणति उसमें केली करती रमती रहती है कि उसकी बातें जो सुनते हैं तो अपने को ऐसा लगता है कि ये जो पुरुष कहते हैं सचमुच में मैं तो ऐसा ही हूं। ऐसा ही अंदर से भाव चलता रहता है, माने कि उसकी देशना में इतनी चमत्कारिक देशना है उसकी, इसकी भाषा में भी कोई ऐसी अलंकारिकता है कि सामने वाले जीव को श्रोता को उसका भगवान आत्मा उसमें नहीं दिखे ऐसा हो ही नहीं सकता। पूज्य गुरुदेव श्री बोलते हैं कि कितना सरल मार्ग है, कितना सहज मार्ग है। दृष्टि का निदान पे बोल आया है। पूज्य गुरुदेव श्री को किसी ने पूछा कि आप ऐसा बोलते हो कि ये अनुभूति इतनी सरल है, इसमें भगवान आत्मा को देखना उसमें कोई पुरुषार्थ इतना है ही नहीं, थोड़ा सा पुरुषार्थ है वो भी यथार्थ समझ का पुरुषार्थ है, यथार्थ समझण का पुरुषार्थ है, यथार्थ समझण हो जाती है तो दृष्टि द्रव्य पे चली ही जाती है। तो पूज्य गुरुदेव श्री को किसी ने प्रश्न किया कि ये अनुभूति इतनी सरल है उसका कोई मार्मिकता तो बताओ। पूज्य गुरुदेव श्री ने ऐसा बोला कि जो हाथी जो चल रहा है ना हाथी, वो हाथी की चाल तो इतनी धीरी होती है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता है, हैं? चींटी की चाल तो स्पीडी होती है और हाथी की चाल तो बहुत धीरे धीरे होती है। वो गुरुदेव ने ऐसा जवाब दिया कि तुम इसके साथ में चल सकते हो। श्रोता ने बोला हाँ हम इसके साथ में तो जरूर चल सकते हैं। तो उसके साथ में चल के उसके ऊपर फूल रख के आ जाओ तुम। तो बोले उसको फूल तो हम रख सकते हैं, फूल रख के तुम आ जाओ, अनुभूति इतनी सरल है, इसमें कोई कठिन काम नहीं है, अज्ञानी ने उसको कठिन बना दिया है, अनुभूति बहुत सरल है, भगवान आत्मा तो मैं हूं, ज्ञान का उपयोग तो प्रकट है, उसको स्वीकार करना है, उतना सरल मार्ग है। स्वभाव को देखे तो बहुत सरल है, विभाव से अंदर आने का सोचे तो विभाव पर दृष्टि रहती है तो विभाव कभी छूटता नहीं है। अगर विभाव को गौण करके विभाव का ज्ञान रखे मगर ज्ञान वो ज्ञान पर भी दृष्टि न रखे, विभाव का ज्ञान रखे मगर वो ज्ञान पर दृष्टि न रखे, वो ज्ञान होते समय मैं तो नायक परमात्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण भगवान आत्मा हूँ, मेरे में विकार हुआ ही नहीं है, मैं तो शाश्वत चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसा जब उसका दृष्टि में आवे ऐसा ज्ञान में आवे तो ये भगवान आत्मा तो दर्शन देने के लिए तैयार है और वो दर्शन दे रहा है, ज्ञान का उपयोग उसका दर्शन ले रहा है मगर उसको स्वीकार नहीं आता है। बस इतना ही भवी जीव का आत्मार्थी का कर्तव्य मात्र इतना है, ज्ञान में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है उसका ज्ञायक का स्वीकार करना, ज्ञायक पर दृष्टि करना, अभेद पर दृष्टि जम जाना, वही ये गाथा का मर्म वही है और वही पूज्य गुरुदेव श्री ने अपन सबको सिखाया है। ये पूज्य गुरुदेव श्री का संदेश सर्व भवे जीव उसका आदर करके सर्व जीव की मोक्ष मार्ग में